कर्मकांड शिविर लेक्चर नंबर 11 किया है कर्मकांड और अभी हम उसका हिंदी अनुवाद यहाँ देख रहे हैं। इसका अपना दूसरा अधिकार है बंध उदय सत्व अधिकार, तो उसमें हम विच्छित्ति का प्रकरण देख रहे थे, बंध की विच्छित्ति। गुणस्थानों में हम देखेंगे, मार्गणांग के विस्तार में नहीं जाएंगे, बहुत थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे उसके बारे में। गुणस्थानों में विच्छित्ति का अर्थ क्या होता है कि जो बंधने वाली प्रकृति विशिष्ट गुणस्थानों में बनती है उसके ऊपर के गुणस्थानों में नहीं बनती, तब उसको कहेंगे ना इन प्रकृतियों के इस गुणस्थान में बंध विच्छित्ति हुई। जो प्रकृतियां पहले गुणस्थान में ही बनती है, दूसरे तीसरे आदि ऊपर कहीं पर भी नहीं बनती है, उन बंधने वाले में से जो प्रकृतियां पहले में जो बनती थी वो ऊपर कहीं नहीं बनती है, तो क्या कहेंगे उनकी बंधे विच्छित्ति पहले में हो। तो पहले गुणस्थान की कितनी प्रकृतियां विच्छित्ति वाली, 16 है। दूसरे गुणस्थान में 25, तीसरे में 0, चौथे में 10, पांचवे में 4, छठे में 6, सातवे में 1, आठवे में 36, वहाँ देख के बता रहे हैं 2, 3 और 4। हम अभी नाम नहीं पूछेंगे आपसे। 9वें में 5, क्रम से 1-1। 10वें में 16, 11वें में 0, 12वें में 0, 13वें में 1, 14वें में बंद ही नहीं, तो विच्छित्ति का सवाल भी नहीं। ये तो हमने देखे, अब यहाँ हम पुस्तक के आधार से आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पुस्तक में भी देखे, उसके नाम भी, इन प्रकृतियों के नाम भी देखे, जरा देख लेते पहले ठीक से। आपको निकालना है पेज नंबर 108। पहले गुणस्थान में जो 16 प्रकृतियां बंध से उच्छित्ति होती है उसके नाम हम देख रहे हैं, कौन से, मिथ्यात्व, कुंडक संस्थान, नपुसक वेदी, असंप्राप्त रूपाटिका सहन, एकेन्द्रिय स्थावर आकर, सूक्ष्म पर्याप्त साधारण, द्विन्द्रिय तीन्द्रिय चतुरी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी नरका। ये पहले गुणस्थान में ही बनती है, ऊपर कहीं नहीं बनती है, तो इनके 16 की यहाँ बंध विच्छित्ति हुई। ये सारी अभी हम बंध की विच्छित्ति देख रहे हैं, यहाँ उदय की विच्छित्ति की बात नहीं कर रहे। अब दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृतियां बंध से भी यहाँ बनती है, आगे नहीं बनती, उसको क्या कहेंगे, उसकी विच्छित्ति यहाँ पर हुई। अभी हमने, हमें पता है कि अनंतानुबंधी पहले गुणस्थान में भी उदय रूप है, दूसरे में वहां बंध भी है, आगे कहीं तीसरे में वगैरह उसका उतना उदय है ना बंध है। तो ये 25 में से 4 तो अनंतानुबंधी के गिनना है, 3 निद्रा स्थान वृद्धि, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, फिर 4 संस्थान न्यग्रोध से लेकर, न्यग्रोध परिमंडल स्वाति कुब्जक वामन, ये संस्थान, बीच वाले चार संस्थान, सॉरी चार सहन है, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, तीर। तीर्यंच संबंधी चार, तीर्यंच गति, तीर्यंच गत्यानुपूर्वी, उद्योत और तीर्यंच दुर्भग, दुस्वर, अनादि, स्त्रीवेद, नीच गोत्र और अप्रशस्त विहाय गति। ये 25 प्रकृतियां यहाँ से बंध से विच्छित है। पुस्तक में लिखा है, मेरी थोड़ी ऑर्डर अलग है कि हमने अलग उस तरह से याद किया। यहाँ तक की बात ख्याल में। तीसरे गुण स्थान में जीरो, कोई बंध की विच्छित नहीं है। चौथे गुण स्थान की बंध विच्छित हमने देखी थी। चौथे गुण स्थान का कषाय कौन सा है? अप्रत्यय अनावरण है, उसका उदय भी है, बंध यहाँ तक ही ऊपर नहीं है। तो ये चार कषाय तो वो हमने की नहीं। और बाकी तो मनुष्य गति संबंधी हमने 6 प्रकृतियां देखी थी। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्ति, उसके साथ औदारिक औदारिक अंगोपांगी बंध गए नक्की है। अब ये समय दृष्टि है तो वज्रशुभ नाराज सहनन का बंध कर रहा है। और फिर मनुष्य आयु एक है, यानी मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक औदारिक अंगोपांग, वज्रशुभ नाराज सहनन और मनुष्य आयु, वो 6 और 4, ये 10 प्रकृतियां यहाँ विच्छित होती। ये इन जनरल बात चल रही है, जो कोई यहाँ बांध रहा है उसकी अपेक्षा से कहीं है। गतियों की अपेक्षा से बात हम बाद में करेंगे, अभी तो सामान्य से सब चारों गतियों की अपेक्षा लेकर हम बात करेंगे। समझ में आइए बस। अभी चौथे की बात हो गई। पांचवें गुण स्थान में चेतना भी बोलो। पांचवें गुण स्थान में चार कौन सी है? प्रत्यक्ष है ना, है ना? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, पढ़ाते ना लोगों को। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम प्रयत्न करेंगे तो ये बातें आसान हो जाए, क्योंकि हमने एक बार सुनने से कुछ नहीं होते। स्कूल का सब्जेक्ट कितने बार रटा था परीक्षा के लिए या कोई अन्य के लिए? 2×2 × 2×2 = 1, 2×2 = 4 करता है ना, 2×2 = 4। कितने बार किया? ट्यूशन भी रखते। इसके लिए कितने ट्यूशन रखते हैं? लोग कहते बहुत हो रहा है, बहुत हैवी हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। फास्ट इसलिए हो रहा है, 5 दिन में हम 30 घंटे सिखा रहे हैं। एक साल का, क्योंकि समय कहाँ है? हमें आपके पास समय नहीं, हमके बहुत समय है हमारे पास। ये नए शब्द है, विषय हमारे लिए नया है। जैसे अध्यात्म का इतना गहरा विषय भी हम रोज सुनते तो कितना सरल हो गया हमारे, कोई उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता। गुरुदेव कितनी भी गहरी बातें कहीं से भी तो उसके बरोबर अपेक्षा हम समझ लेते, क्योंकि वो द्रव्यान योग से भी हम परिचित हो गए, इससे भी अपरिचित है। पर अपरिचित है तो डरने की क्या बात है? माँ से पेट से जब हम जन्मे थे क्या क्या जानते थे? कुछ नहीं जानते थे। वो कुछ नहीं जानने वाला हमारे घर में बच्चा आया तो उसके साथ कितने घंटे तक बातें करते हैं? वो बच्चे के साथ जिस भाषा में बातें करेंगे वो बच्चा उस भाषा में सीख जाता है। उसको ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं सीखेगा, क्यों? उसकी बारात तक लेके आते, उसको सब समझाते, तो तेरी बारात आएगी, यदि इसको बुलाएंगे वो हाथी झूलेंगे और क्या क्या करेंगे। वो बच्चा भी सुनते 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 6-8 महीने में माँ बा वाह वाह क्या कुछ करते करते 1.5-2 साल में इतना बोलना लगता है कि घर में अभी चुप बैठे तो अच्छा लगता है। हम भी बार बार सुनेंगे, इसको समझेंगे, कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आ जाए। देखो हमने दोनों ही ये सब शास्त्र पहले ढूंढरी भाषा में पढ़े थे। लब्धिसार पढ़ा था तभी रोना आता था, रोज पढ़ते थे, रोज रोते थे मैं, क्योंकि हमारा पढ़ना तो 8.5 घंटे हमारा स्वाध्याय चलता था, क्योंकि निवृत्ति लेने के बाद काम क्या था। परंतु पढ़ते तो थे, समझता कुछ नहीं था, परंतु एक नक्की किया था कि अपनों को पढ़ना ही है। तो दोबारा पढ़ा, अनेक बार उसको पढ़ाया भी, फिर उसका अर्थ सरल होने लगा, उसके शब्दों के अर्थ समझ में आने लगे। अभी तो अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो इसलिए लगता है कि हमें तकलीफ हुई थी समझ में, आप लोग अच्छा है कि इस उम्र में आपको रुचि जगी है तो अभी से आप इसमें कुछ समझ जाओ तो और आगे बहुत तरक्की करेंगे। देखो यहाँ हम बंधक की विच्छित्ति देख रहे थे, चौथे की देखी, पांचवे की देखी, छठे गुणस्थान में हमने अ अ अ देखे थे और एक ही शोक था बाकी, वास्तव छठे बाकी एक शोक था। बोलो अस्थिर अशुभ असातावेदनीय अयशस्कीर्ति अरति अर्शो हो गया ना। सातवें गुणस्थान में एक ही है देवाय, इसके आगे वो नहीं बंदेगी कहीं। आठवें गुणस्थान में पहले भाग में दो निद्रा और प्रज्ञा, निद्रा और प्रज्ञा की बंदे उचित होते पहले भाग में। छठे भाग में 30 प्रकृतियों की, क्योंकि वहां बंध योग्य मैंने ये बंधने वाली तो वहां 31 है, देवगति युद्ध तो ये सारी प्रकृतियां बनती है, इन्हें देवगति वाली तो 28 प्रकृतियों का वो लॉट है उसका, अब मेरी भाषा में उसका पैकेज है नाम कर्म का बंध का, तो उसमें तीर्थंकर और आहारस भी दो मिला दो 31 बनती है, उसमें से यशस कीर्ति बनती रहेगी, बाकी 30 की बंध विचित्ति होगी। उसके बाद सातवें भाग के लास्ट में चार मोहनी की हास्य रति भयोदी यही तक बनती। अब नवे गुणस्थान में कितने देखे थे हमने, पांच, वो क्रम से एक 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 बंध विच्छित्ति होती है। पहले भाग तक पुरुष वेद बनता है, आगे नहीं बंधेगा, फिर क्रोध बनना रुक जाता है, फिर मान बनना रुक जाता है, माया बनना रुक जाता है, नवे के अंत तक लोभ का बंध है। अब आगे दसवें में नहीं है तो कहेंगे यही उसके बंधे की विच्छित्ति हुई। दसवें में सूक्ष्म लोक का उदय है परंतु मोहनीय का कोई बंधन नहीं है। तो दसवें गुणस्थान में बंधने कितनी बनती, 17 बनती है, उसमें से 16 की विच्छित्ति होती है बंधे की विच्छित्ति। कौन से 16? ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 4, हाँ 5 अंतराय, नाम में से केवल एक यशस कीर्ति रह गई थी वो बनती है और उच्च गोत्र बनता था, ये 16 की विच्छित्ति हुई यहाँ पर। क्या बचा उसमें से, सातावेदनीय बच गई, वो 11वें में भी बंधेगी विच्छित्ति नहीं है, 12वें में भी बंधेगी विच्छित्ति नहीं है, 13वें में बनती है, 14वें में नहीं बंधेगी तो कहेंगे इसकी 13वें में बंधे विच्छित्ति हुई। इस तरह से हमने सारी प्रकृतियां यहाँ गिन ली। अभी उसमें कितनी बनती है कितनी अबंध है उसकी भी चर्चा यहाँ पुस्तक में की है। पुस्तक में तो चार्ट है परंतु आपके हाथ में वो चार्ट नहीं था और बोर्ड में भी नहीं था, इसलिए यहाँ ये लिखवाया है लाल कलर में, जो पेज नंबर 113 पर ये चार्ट है, परंतु उसका डिस्क्रिप्शन उसके पहले है, उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ते पढ़ते हम उसको चार्ट को देखेंगे। ये 103 गाथ है ना उसकी टीका, 111 के जो लास्ट पैराग्राफ है वहां से ये बात शुरू होती है इसका डिस्क्रिप्शन, वो चार्ट समझना है। अभी उसमें क्या बताया, गुणस्थान भी बताया, विचित्र तो हमने सभी देखे, वहां कितनी प्रकृतियां बंधती है और कितनी अबंध है ये उसका भी हिसाब लगाया है, यानी ये सभी बातें हम देखेंगे। पुस्तक में चार्ट है परंतु सबके पास पुस्तक शायद नहीं है, इसलिए बोर्ड पर भी ये लाल अक्षरों में नीचे लिखा है, पुस्तक में यही चार्ट 113 पेज पर है। देखो अभेद विवक्षा से बंध रूप 120 प्रकृतियां हैं, वो तो हमने बहुत बार देखा। अभेद क्यों कहा, क्योंकि उसके भेद करेंगे बंधन संघात के और वो स्पर्श रस गंध वर्ण के डिटेल्स करेंगे तो 148 का हिसाब होता है, उसमें से 26 कम करें तो 122 है, उसमें से दो प्रकृतियां बनती नहीं है इसलिए बंध योग्य में 120 प्रकृतियां दी। वहां मिथ्याक में 117 प्रकृतियों का बंध है, क्योंकि विच्छित्ति जीरो लिखी किस
बंध में जीरो,
अरे सॉरी 13वें में लिखा, वो 14वें में लिखना था, हाँ हाँ बराबर है, नहीं 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 हाँ वो 14वां लिखना है फिर जीरो करना है इसको। नहीं ये
तेरह का है, तेरह को भी एक और एक से 19 और ये 14 की बात है, ये 14वीं बाई की बात वहाँ लिखी है, उसका एक करो और वो 119 करो, 119। अच्छा है आपने दिखा दिया, फिर ऊपर 14 करो, इच्छित्ती भी जीरो, बंध भी जीरो और अबंध में 120। हाँ अच्छा है, हाँ अभी हम यहाँ पढ़ेंगे 103 गाथा की टीका पढ़ रहे हैं, तीन गाथा यानी 111 पेज लास्ट करेगा। यहाँ कहते मिथ्या तो में 117 का बंध है, 103 का नहीं है, क्यों नहीं है बताया, समय और तित्त बंधो, यानी समय दृष्टि को ही कीर्तन कर प्रकृति का बंध होता है। आहार दुगम प्रमाद रहित, आहार द्विक प्रमाद से रहित, यानी सातवें आठवें गुण स्थान में प्रमत्तों के होता है, ये उसी का अर्थ ब्रैकेट में लिखा है। कीर्तन कर प्रकृति का बंध समय दृष्टि के तथा आहार द्विक करेगा बंध प्रमाद रहितों में होता है, इसलिए यहाँ तीर्थंकर प्रकृति आहार द्विक इन तीन का बंध नहीं है। आहार द्विगुण लिखा था ना, इसलिए वो क नहीं लगाया, क्योंकि मूल में आहार द्विक लिखा था इसलिए वो क नहीं लिखा था। इन 117 में से कितनी विच्छित्ति होती है देखिए हमने, 16। हाँ मिथ्या तो में विच्छित्ति होने वाली 16 घटाने पर सासाधन में 101 का बंध है। देखो आपकी वो चार्ट नंबर 113 पेज पर चार्ट है, उसके साथ आप सुन सकते हैं या बोर्ड पर भी देख सकते हैं। पहला गुणस्थान है 117 का बंध है, तीन अबंध है, उसमें 16 की विच्छित्ति हुई। अब ये दूसरे गुणस्थान में वो 16 नहीं बंधेगी, बंधने वाली 117 थी उसमें से 16 का बंध रुक गया, तो 101 का बंध होगा। और बंद अबंध का हिसाब करना है तो उसकी टोटल 120 आ जाएगी, ऐसी ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको। बंधने वाली आपको बता दी 101 है, तो नहीं अबंध रूप कितनी चले जाएगी, 19 कैसे निकाली, 16 विच्छित्ति और 3 अबंध। वो जो तीर्थंकर आहार द्विक यहाँ पर भी नहीं बन रही है वो 3, और जो 16 बंधने से रुक गई वो 19 अबंध में चली। ख्याल में आती है ना, अबंध इसलिए कहा इसमें से तीर्थंकर आहारक भी आगे चलकर बंधेगी, पर जो 16 है वो कहीं पर भी नहीं बंध रहे। आगे देखते हैं, पुनश्च इनमें से यहाँ 25 की विच्छित्ति होती है, यानी सासाधन में, तथा देवायु मनुष्यायु का मिश्र में बंध नहीं है। देखो यहाँ 101 बनती थी उसमें 25 चली गई, तो 25 अगर जाती उसमें से तो 74 कैसे आ गए, यहाँ और 2 माइनस कर, और 2 माइनस कर भी कौन सी, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में आयु का बंधन नहीं है। तो आप कहेंगे चार आयु का बंधन नहीं है, तो 4 और उसमें से माइनस करनी थी, नहीं वो 16 में हमने नरकायु को गिना था और 25 में तीर्यंचायु को गिना था, अब जो 2 बचे आयु है वो आगे चौथे में बंधने वाली है, परंतु तीसरे में नहीं बंधेगी तो उसको अबंध में डाल दिया। नहीं तो अबंध का हिसाब कैसे होता, कि 16 25 वो 41 हो जाती है और यहाँ वो और 3 मिल जाते हैं, तो उसका हिसाब अलग होता, परंतु यहाँ आयु को उसने गिन लिया। समझ में आती नहीं ये बात, तो तीसरे गुणस्थान में बंधने वाली कितनी हो गई, 74, और अबंध में हो गई 46। हाँ मिश्र में विच्छित्ति का अभाव है, विच्छित्ति का अभाव है ना, ऐसी कोई प्रकृति नहीं कि जहाँ यहाँ बनती है और आगे नहीं बनती है, ऐसी कोई नहीं है, इसलिए विच्छित्ति का अभाव। तथा बंध में देवायु मनुष्यायु तीर्थंकर ये 3 मिलाने से असंयत में 77 का बंध है। देखो अभी जो अबंध में क्या यहाँ आयु नहीं बनती थी, तीसरे गुणस्थान में आयु नहीं बनती, चौथे गुणस्थान में वो हाँ नारकी, और चौथे गुणस्थान वाले नारकी और देव है वो तो मनुष्य ही मान देंगे, चौथे गुणस्थान वाले मनुष्य है, वो देवायु बांधेंगे, नाना जीवों की अपेक्षा बात है ना, तो उसको मिला देना यहाँ पर। और क्या यहाँ से शुरू होगा, चौथे गुणस्थान से तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी किसी किसी के होगा, तो ये तीन प्रकृति वहां ऐड कर देना उसमें, क्योंकि यहाँ विचित्र तो कुछ नहीं थे, तो इसमें तीन ऐड कर दी तो 77 का बंध होगा यहाँ पर। अब 77 है तो 120 का हिसाब लगा ना, तो 43 यहाँ अबंध में चली जाएगी। अभी 77 में यहाँ तो 10 की विच्छित्ति होती है, चौथे गुणस्थान में 10 गिनाई थी ना हमने, और प्रत्येक चार और मनुष्य गति संबंधी 6। अभी इसमें से 10 कम करो तो यहाँ 67 प्रकृतियां बन जाएंगी, और वहां 53 है वो अबंध है। अभी भी यहाँ पांचवें गुणस्थान में तीर्थंकर तो बन रही है, आयु का भी बंध है, परंतु यहाँ क्या नहीं बन रहा है, आहार द्विक यहाँ नहीं बन रही है, वो 7वें 8वें में बन देगी। अभी यहाँ बंधन की इच्छुति 4 की है, तो 67 में से 4 माइनस कर दो तो यहाँ 63 बन देगी, तो 63 बन देगी तो 57 अबंध में चली जाएगी। यहाँ की बंधन की इच्छुति 6 की है, 63 में से 6 जाते तो कितने रहते, 57, परंतु यहाँ 2 बढ़ाए हैं आहार द्विक, समझ में आए ना, इसका बंध हो रहा है यहाँ पर, इसलिए इसको बढ़ाया, ये 59 हो गई। और 59 में यहाँ देवायु का बंध था, वो इसके आगे नहीं होगा, तो इसको माइनस करेंगे 59 को, तो यहाँ 58 आ गए। अबंध का हिसाब तो आप कर सकते हैं कि या तो इस तरह से गिनकर निकालो, या डायरेक्ट 120 में से घटाकर निकालो, बात एक ही है। ये 58 हो गई ना 8वें गुणस्थान में, तो 8वें गुणस्थान में कितनी विच्छित्ति होती है, 2, 30 और 4, 36 टोटल हम लास्ट में बताएंगे, तो 58 में से 36 चली गई, तो कितनी रह गई, 22 रह गई। इन्हें 9वें गुणस्थान में 22 प्रकृतियों का बंधन है, जो 10वें में बनती वो 17, और ये 5 मोहनी की बन रही है, एक वेद और 4 संवर, पुरुष वेद और 4 संवर, और बाकी ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतराय है, नाम की एक है, गोत्र की एक है, वो सब बन रही है यहाँ पर, वेदनी एक है, उसमें से 5 गई। कौन सी 5 याद है ना, विचित्ति, पुरुष वेद और संज्वलन की 4। अब ये 5 इसमें से गई 22 में से, 17 रहेगी बनने वाली, 10वें गुणस्थान में 17 का बंध है, उसमें से 16 की विचित्ति हो जाएगी, वो गिना ही कभी। ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 4, अंतराय 5, 14 हुई, यशस कीर्ति उच्च गोत्र वेदनी बनती रहे, तो 17 में से 16 गई, तो यहाँ 1 का बंध है, वो बंध रुकता नहीं है, 12वें वाले को भी है, तो यहाँ पर भी 1 का बंध है, वहां पर भी कोई विच्छित्ति नहीं है, 13वें वाले को भी 1 का बंध है, परंतु यहाँ विच्छित्ति 1 की होती है, 13वें गुणस्थान में वो बंध रुक जाता है, नहीं 13वें के आगे नहीं बंध होता है, अयोगी को बंध नहीं है, तो इसलिए अयोगी में बंध ही नहीं है, विच्छित्ति का ही सवाल नहीं है, अबंध में सारी 120 प्रकृतियां अबंध में चल रही, हिसाब लख्या में है ना, कैसे करना है, यानी ये टेबल किस तरह से पढ़ना है, ये तरीका है, आगे ऐसे ही हर एक मार्गणा के लिए अलग अलग टेबल बनाए, कहीं कहीं तो उन्होंने नहीं बनाया, परंतु हमने सीखते समय उसके अलग से टेबल बना के हमने घर में उसका अभ्यास किया। मार्गणा कर सके 4 गतियों में, क्योंकि हर एक गति वाले तो अलग अलग कर्म बांधते हैं, जैसे मनुष्य है चारों गति बांधेंगे, परंतु देव है क्या वो देव गति बांध सकते हैं, देव मरकर देव में जाते हैं कि नहीं जाते मालूम नहीं, कोई बात नहीं, देव है वो ना देवगति बांधते हैं ना नरक गति बांधते हैं, उनके लिए 2 ही गति है, या तिर्यंच गति बांधेंगे या मनुष्य गति, तो जो बांधते हैं उसमें से विच्छित्ति कहेंगे हम। देव है वो सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त ये कर्म ही नहीं बांधते हैं, हाँ परंतु भवनवासी और सौधर्म ईशान वाले एक केंद्रीय का बंद करेंगे, एक केंद्रीय स्थावर आतप का बंद कर सकते हैं, तो वो बंधने वाली गिनकर फिर उसकी विच्छित्ति कहेंगे हम। नारकी है वो एक इंद्रिय का भी बंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए पहले गुणस्थान में हम 16 प्रकृतियां नहीं गिनेंगे, उनके लिए 4 ही गिनेंगे, ख्याल में है ना, मार्गणाओं में कैसा डिफरेंस होगा, जो बंधने वाली है पहले में जो बांधते ही नहीं उसको पहले ही ना रूल आउट कर देंगे। यहाँ हमने 120 बंधे योग्य कहा, वहाँ बंधे योग्य ही कम कहेंगे। नार की जो बांधते ही नहीं है उसको बंधे योग्य में गिनेंगे, देव जो बांधते ही नहीं है उनको बंधे योग्य में गिनेंगे। इस तरह से जैसे एकेंद्रिय की बात अगर किसी ने पूछी तो एकेंद्रिय जीव में गुणस्थान कितने, तो एक गुणस्थान ही है, मिथ्या तो गुणस्थान। हाँ कहीं कहीं वो तो मरकर साधन में मरकर जाने वाले की अपेक्षा बताते हैं, उसमें भी दो मत है। एक आचार्य को ऐसा कहना कि साधन के साथ मरकर वहां उत्पन्न हुआ एकेंद्रिय पर्याप्तों में बादल जीवों में, और फिर शरीर पर्याप्ति के पहले पहले मिथ्या तो में चला गया। और एक मत ऐसा कि मारणांतिक समय में उसमें साधन हो सकता है, परंतु एकेंद्रिय में जब उत्पन्न हुआ वो मिथ्या तो में उत्पन्न होता है। ऐसे महाबंध धौला में इसमें भूत बलिया आचार्य ने महाधवला में ये स्वीकार किया है कि साधन एक इंद्रिय में साधन के साथ एक इंद्रिय में मारणांतिक करेगा, तो जहां उत्पन्न होने के समय वो मिथ्या तो गुण स्थान में चला जाता है। और कहीं तो ये दूसरी अपेक्षा भी है कि साधन के साथ वो पर्याप्तों में उत्पन्न हुआ और बिल्कुल शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले पहले वो मिथ्या तो में चला गया। दो ही कथन आते हैं वहां, वो उदय की अपेक्षा में तो अलग अलग मत, वहां उसकी चर्चा करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं ये जो अभी हमने पढ़ा ना टेबल पढ़कर उसका यह हमने विवरण भी पढ़ लिया है। ये सब बंधकीय और अबंधकीय अलग अलग से उन्होंने उसका हिसाब करके सब बता दिया है। यानी ये तो गुणस्थानों में उन्होंने विच्छित्ति बताई, बंधने वाली बताई, अबंध वाली बताई, ऐसे ही अभी मारणा में पूरा कथन करेंगे। उसके विस्तार में हम नहीं जाने वाले क्योंकि एक एक मार्गणा का भिन्न भिन्न स्वरूप भी हमें पता होना चाहिए कि उस मार्गणा में कैसी प्रकृति कौन सी बन सकती है, उस मार्गणा में गुणस्थान कौन से हो सकते हैं, उनकी योग्यता क्या क्या है, क्या क्या बांधने की है। जैसे एकेंद्रिय की बात है, एकेंद्रिय जो ना देव गति बांधेंगे ना नर गति बांधेंगे, ना उसके अनुकूल बांधेंगे, ना उनकी आयु बांधेंगे, ना वैकृत शरीर बांधेंगे, ना अंगों पांग बांधेंगे, उसको पहले हम रूल आउट करेंगे। ये मार्गणाओं का स्वरूप है। केवल हम गति की अपेक्षा बात करके देखते हैं। यहाँ पर देखो पेज नंबर 113 गति मार्गणा में जो है ना, अभी हमने मिथ्यात्व में कितनी प्रकृतियां, गुणस्थानों में कितनी प्रकृतियां बनने वाली देखी थी, 117 बनती और विच्छित्ति 16 की होती। अब जहां जो 16 की विच्छित्ति होने वाली है उसमें से पहली चार तो नारकी बांधता है, मिथ्या तो को भी बांधता है, मुंडक संसार नपुसक वेद सम्राट, परंतु वो एक इंद्रिय आदि जो आगे के हमने गिनी है ना वो प्रकृतियां नारकी जो उनको बनती ही नहीं है, तो उसको पहले से हटा देंगे। 16 में से 12 तो उनकी बनती ही नहीं है, तो नारकियों के लिए बंध योग्य कितनी कहेंगे हम, यहाँ उसकी बात लिखी हुई है, यहाँ उन्होंने टेबल नहीं बनाया, कोई बात नहीं। तो 12 प्रकृतियों का बंध ही नहीं है, तो 120 में से पहले हम 12 को माइनस करेंगे। देखो यहाँ लिखा है 113 पेज पर गति मार्गणा में मिला, नीचे के पैराग्राफ की सेंट्रल लाइन, गति मार्गणा में नरक गति में मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्वादी पहली चार प्रकृतियों की ही विच्छित्ति होती है। क्यों, जो बनती है उसी की विच्छित्ति, जो बनती है नहीं उसकी विच्छित्ति कैसे कहेंगे हम। ख्याल में आती है अपेक्षा क्या हो रही है यहाँ पर। मिथ्यात्व गुणस्थान में जिन 16 प्रकृतियों की विच्छित्ति कही थी, कहाँ कही थी, गुणस्थानों में कही थी। अब नारकियों में पहले गुणस्थान की बात हो रही है, मार्गणाओं में गुणस्थान लगा रहे, उनमें से आदि की चार प्रकृतियों को छोड़कर ऊपर की 12 प्रकृतियों का बंधन नरक गति में नहीं है। अब नरक गति में आहार इंद्रिय का भी बंधन नहीं है, वैसे जो नहीं बंधने वाली उसको उठा देंगे। यहाँ पहले 3 नरक में तो तीर्थंकर प्रकृति बंधने वाली में ही नहीं है, नीचे के नरकों में तो उसको भी निकाल कर बात करेंगे। अब नरक गति में और क्या नहीं बनता, देवगति भी नहीं बंधेगी, वो देवत्यानुपूर्व वैक्रिक वैक्रिक अमुपांग उसका भी बंध नहीं होगा, तो वो वहाँ नहीं बंधने वाले की सबको हम पहले ही माइनस कर देंगे। नरक गति तो हमने यहाँ गिनी 12 में, देखो यहाँ उसकी लिस्ट बताइए क्या क्या नहीं बनती है। एकेंद्रिय स्थावर आतप, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, विद्य तिंद्रिय चतुरेन्द्रिय, नरक गति नरकत्या पूर्वी नरकायु, ये 12 तो विच्छित्ति वाली में से 12 ही। और कौन सी नहीं बनती उसकी बात बताते, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, वैकरिक वैकरिक अंगोपांग, देवायु आहार अग्रिक, साथ हो गई नहीं वो 12 और ये 7, 19 प्रकृतियों का बंध नरक गति में नहीं होता। इसलिए धर्मादिक, देखो यहाँ जहां जहां धर्म आया वहां धर्मा करना, धर्मा नाम है, धर्म हो गया है बहुत जगह। 3 पृथ्वियों में बंध योग्य 101 प्रकृतियां हैं। नीचे के नरकों में क्या है, तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी, तो वहां क्या करेंगे, सब का बंध हो जाएगा। हाँ, सातवें नरक में मनुष्यायु बनती ही नहीं है, वहां का नियम है। देखो वहां तो ऐसे कि जीव एक अंतर्मुख के बाद सम्यक तो प्राप्त कर सकते, कहां सातवें नरक में ऐसे भी कोई जीव है, वहां जन्म तो सारे मिथ्या दृष्टियों का ही होगा ना, दूसरे से लेकर सातवें नरक तक मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होते। पर्याप्ति पूर्ण होने पर एक अंतर्मुख के बाद सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम ऑप्शन भी कर सकते हैं और क्षोभम भी कर सकते हैं। प्रथम ऑप्शन एक समय में आवली के असंख्या तो भाग प्रमाण असंख्या जीव प्रथम ऑप्शन कर सकते हैं। सब कारण सबका छोटा है
उसको नहीं, उधर वेदना भी इतना वेदना हो रहा करके इससे पहले हो गया।
वेदना तो चल ही रही है, वो तो पर्याप्ति से वो चल ही रही वेदना, उस काल में भी सम्यक तो हो सकता है।
जनरली हम क्या सुनते हैं कि भाई नारकी जी क्यों मुझे इतना ज्यादा हो रहा है करके, तो वो
वेदना वो सोचता है बाद में, वो तो कहने की पद्धति है। कर्णान योग में बहुत सूक्ष्म वर्णन आता है, समझ में आता है। और ये केवल गम्य बात है, ये तो एक तो साधारण स्थूल कथन होता है कि नारकियों में सामान्य से क्या कहेंगे, अरे वहाँ वेदना है तो विचार करता है मुझे क्यों है, तो फिर सर वो सारा वो उसमें हो जाएगा, क्योंकि वो तो अभिज्ञान तो वैसे भी होता ही है वहाँ पर, पर्याप्त होने पर वो उनके विभंग ज्ञान को अभिज्ञान तो था ही था। तो यहाँ क्या बात हो रही है कि किसी ने एक अंतर्मुख के पश्चात समय तो प्राप्त किया, तो अधिक से अधिक लंबे उसका समय तो कितने काल तक था, तो कहते अंतिम एक अंतर्मुख छोड़ दो, क्योंकि वहां वो मिथ्या तो मिल जाएगा, आयु का बंद करेगा और अंतर्मुख में मरकर पंचेन्द्रिय हो जाएगा। तो कितने काल तक समय में रहा वो, 33 सागर महीने दो अंतर्मुख कर दिया, इतने लंबे काल तक समय दृष्टि रह सकता है कहाँ का जीव, सातवें नरक, और वहां कितनी प्रतिकूलता है। हम तो संयोगों की तरफ से देखते हैं ना, ग्यारहवें गुणस्थान से कोई डायरेक्ट जीरो में नहीं आता है, आ सकता है, ये परिणामों की विचित्रता है।
तो क्या होगा मुनिराज के परिणाम इतना गिरने?
आपका प्रश्न है क्या होता है मुनिराज के परिणाम इतने गिरने से? देखो श्रेणी भी कौन चढ़ते, तो पूर्व भी श्रेणी चढ़ते हैं, नहीं समझे? श्रेणी चढ़ने वाले कौन होते हैं? पूर्वविद होते हैं। पूर्वविद किसको कहेंगे, या 10 पूर्वी का ज्ञान होगा या 14 पूर्वी का ज्ञान होगा? 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान होने वाले श्रेणी चढ़ सकते हैं। और यहाँ तो पूछते करना नहीं, वो पढ़ने से फायदा क्या? और सब कभी हमें वो एकमात्र मुनिराज याद आते हैं। शिवभूति मुनिराज, अरे उनका भी जब श्रेणी चढ़ेंगे तो ज्ञानावरण का कितना वो अनुभव कितना घटेगा, इतने अनुभव कांडघात हो जाते हैं, तो उनका ज्ञान कितना विकसित हो जाएगा, समझ में आएगा? वो भले छठे साल के गुणस्थान में सामान्य से कहते, परंतु वो सब ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है वहां। ये तो हमें तो ये क्यों ये याद आता है, क्योंकि हमको पढ़ना नहीं है ना, इसलिए उनकी याद करते हमेशा। पर सूत्र की याद नहीं करते कि सूत्र में लिखा है कि पूर्व विदों को ही श्रेणी चढ़ी जाती है।
शुक्ले चाते
पहले,
हाँ
शुक्ले चाते पूर्व विदा, पहले दो शुक्ल ध्यान पूर्व विदों के होते हैं। कौन से पहले दो शुक्ल ध्यान? पृथक्त्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क अविचार। विचार यानी संक्रमण, पलटना, योग से योगांतर। और उनका जो विषय है, ध्यान का ध्येय है, उसमें भी द्रव्य से द्रव्यांतर आदि सब वहां होते रहते हैं। श्रुत ज्ञान का कोई शब्द है उससे भी व्यंजन से व्यंजनांतर ऐसा होता है। तो ये पलटता है तो उसको पृथक्त्व वितर्क विचार का, विचार है पलटना। ये किसके होते हैं? यानी आठवें गुण स्थान से ये ध्यान होते हैं, बारहवें के संख्या बहुभाग तक, और बारहवें का अंतिम जो संख्या द्वा भाग है वहां जाकर वो एकत्व वितर्क अविचार होता है। अभी उसका योग भी वही, उसका एक ही पॉइंट पर उसका एकाग्रता है, अभी वो बदलता नहीं है, तब जाके उसको क्या हो जाए।
तेरहवें में शुरू में क्या
हो? वो कुछ नहीं है, तेरहवें की शुरुआत में कोई नहीं है, परंतु वहां ध्यान इसलिए कहा है क्योंकि अभी वहां निर्जरा चल रही है, इसलिए उसको ध्यान कहते। पर ऐसा ध्यान वहां कुछ नहीं है, वो ध्यान का फल है, केवल ज्ञान ये ध्यान का फल है, वहां कोई ध्यान नहीं है। ध्यान किसको कहेंगे? उपयोग हरेक से, हर एक से हटकर हम किसी एक सब्जेक्ट पर केंद्रित करेंगे तो उसको ध्यान कहेंगे। अब उनका पूरा उपयोग स्वरूप ही ज्ञान है, वो कहां से हटाएंगे बोलो? सभी द्रव्य, सभी गुण, सभी पर्याय, सभी त्रिकाल की सब कुछ एक साथ ज्ञान में आ रही है। हमें आपको फैसिलिटी है कि इधर नहीं देखो, इधर देखो। उनके ज्ञान में तो सब कुछ झलक रहा है, तो उनको ध्यान कहेगा? सब कुछ उनका ज्ञान में, उपयोग रूप ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, यानी वो जान रहे हैं। उनको ध्यान इसलिए कहने में आता है कि वह तो असंख्या गुण मिल जाए वो चल रहे, इसलिए उसको उपचार से ध्यान कहते हैं। पर केवल ज्ञान ये ध्यान का फल है। फिर लास्ट में जाके जब होता है ना सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी, यानी जो योग है वो बादर योग था, जैसे या कर्मों में बातें होती ना, उसमें भी स्पर्धक, पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि सब ये योगों में घटित करेंगे। वो तेरहवें के अंत में जाके होते हैं, उसको कहेंगे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान। और फिर चौदहवें में जाकर ये तो कायम के योग, फिर प्रतिपात नहीं होता, अब तो विपरीत क्रिया और प्रतिपात निवर्ति, ऐसा उसका स्वरूप है। तो पहले दो शुक्ल ध्यान पूर्व विदों के होते हैं, ये उसकी बात
है। उतरते हैं तो फिर वापिस ये ज्ञान रह भी सकता है, चला भी जा सकता है, ऐसा होता है?
नहीं नहीं, रहेगा ना, क्योंकि वापिस इतना तो बंद नहीं होगा जैसे पहले बंद हुआ था, ये चले जाने की बात नहीं है वहां पर।
ये जो ज्ञान है हाँ। उस श्रेणी वही मानते हैं जिसको इस प्रकार से
ज्ञान है, छठे सातवें में ज्ञान हुआ और उसने श्रेणी मान ली, तो वो ज्ञान तो नष्ट तो नहीं होगा, ये कहना चाहिए।
छठे सातवें में हो जाएगा
हाँ, फिर दोबारा आएंगे छठे सातवें में,
मुनिराज वहां से छठे सातवें से भी गिर गए और चौथे में आ गए
हाँ,
तो वो ज्ञान ग्यारह मुक्ति का बोला था।
पहले में आए तो वो ज्ञान तो नहीं रहने वाला है हाँ, उसमें से कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मिथ्या तो में आए उसका अर्थ क्या है? वो तो मुख्यता जो बारहवें अंक की मुख्यता थी चले जाते। दसवें पूर्व में क्या होता है, क्या नाम है उसका? दसवें पूर्व में क्या है? प्रत्याख्यान हुआ है, विद्यानुवाद, उसमें वो सारे जो अमेरिकी विद्या वगैरह जो कहते हैं ना, उस संबंधी भी सारा ज्ञान होता है उनके, उसमें तो कई ऐसे जिसको भिन्न दश पूर्वी, अभिन्न दश पूर्वी कहते हैं, ये दश पूर्वी होकर जो छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि उस विद्या उनका वो तो ऐसा कुछ भाव होता होगा कि चलो इसका फल देके इसका यूटिलाइज करे, इसको कुछ उपयोग करे, जो वशीकरण या अन्य जो कुछ मारण उच्चारण ये जो कोई ऐसी आदि विद्या है। ज्ञान किसका नहीं होगा? सबका ज्ञान है, परंतु वो ज्ञान करने के लिए ज्ञान नहीं होता है, नहीं समझे? भगवान की वाणी में किस संबंधी ज्ञान नहीं है? अरे वो नृत्य संबंधी, संगीत संबंधी, आयुर्वेद संबंधी सब कुछ ज्ञान है, पर क्या वो नृत्य करना चाहिए ऐसा लिखा है क्या वहां पर? वास्तु संबंधी भी वहां है कि नहीं, घर कैसा बांधना चाहिए, कैसे क्या है, पर तो हमारा घर ऐसा है वो तोड़कर ऐसा बांध दो तो आप सुखी हो जाएंगे, ऐसा लिखा है क्या वहां पर?
मान लेते हैं बहुत सारे,
मान लेते ना अभिमान, क्योंकि मैंने कहा ना मिथ्या तो नया नया फैशन लेके आता है वो करने से हम सुखी हो जाएंगे, क्यों? पैसा ज्यादा मिलेगा। सब पैसे वालों को पूछो कितने सुखी है, क्यों रमेश भाई क्या करें?
वो मुनिराज जो 36 में बोले थे जिनको ये ज्ञान है 11, 10, 14 पूर्व का, अगर वही मुनिराज द्रव्यलिंग हो जाते हैं तो भी 11, 9 पूर्व तक का ज्ञान तो उनको भी रह जाएगा ना।
हरे मैंने द्रव्यलिंग होते हैं ना उनका भावलिंग नष्ट हो जाता है, ऐसा हम कहें ना, कभी कभी तो शिथिलाचारी भी हो जाएगी उसमें। अभी पॉसिबिलिटीज बहुत सारी अलग अलग जीवों की, कौन से जीव की कैसे जीव की भ्रष्ट होते हैं मिथ्यात्व में आते, उसका अर्थ क्या है? ऐसा जिनके पुरुषार्थ हुआ था वो भी इस तरह से हो गए, उसका अर्थ क्या होता है? ये तो यहाँ ज्ञान कराया जाता है कि कैसे कैसे परिणाम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज की बात है। हर कोई 11वें में जाने वाला गिरकर मिथ्यात्व में नहीं जाता है, समझ में आया? पर कौन सा जा सकता है? हो सकता है कि फिर उस गांव में वो देव में चला गया और बाद में मिथ्यात्व में गया, ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज कहाँ कितनी है, कौन सा अधिक से अधिक लंबे काल तक मिथ्यात्व में रह सकता है, मिनिमम कितना रह सकता है, ये सारी बातें जो केवल ज्ञानी ने जानी है उसका आगम में उल्लेख है। अभी हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, यानी नारके में हमने यही बात देखी कि ऐसे सातवें नरक में भी कितने जीव सम्य दृष्टि है वहां पर, क्योंकि वो यहां से तो लेके गए नहीं है, वहां जाने के बाद प्राप्त किए, असंख्यात जीव है, उससे असंख्यात गुणे छठे नरक में, उससे असंख्यात में पांचवे में, चौथे में, दूसरे में, पहले में, तो उससे भी असंख्यात गुणे सम्य दृष्टि है। अरे क्षायिक समय दृष्टि असंख्यात है पहले नरक में, और जाने वाले तो हर 6 महीने 8 समय में 608 ही जीव होने का दर्शन होने का क्षय कर सकते हैं, उसमें से कुछ जिन्होंने पहले नरकायु बांधी वो क्षायिक लेकर नरक में जाएंगे, यानी 6 महीने में समझो ना 2-4 जाएंगे, और वहां की आयु इतनी लंबी है तो वहां उनका संचय की अपेक्षा, वहां हर 6 महीने कुछ गए कुछ गए कुछ गए, तो वहां कितने असंख्यात है। तो ये पल्ले और सागरों की हमें पता ही नहीं कितना बड़ा काल है, और फिर उसमें से छोटे थोड़े थोड़े निकलेंगे, वहां क्षायिक लेकर गए तो यहाँ आके मोक्ष चले जाएंगे। अभी आगे देखते हैं, यानी यहाँ कैसे गिनते हैं, जो प्रकृतियां बनती है उसमें से वहां कितनी विच्छित्ति होगी ये आपको सोचना है। ये हमने नरगति की बात देखी थोड़ी,
बंद
सब गिनना उसमें से, यानी पहले में पहले जहाँ जैसे हमने यहाँ 120 बंदे योग्य देखे, उसमें से फिर हमने बंद अबंध का हिसाब लगाया, वैसे वहां जितनी बनती है बंद योग्य कितनी है, उसमें से फिर मिथ्यात्व में कितनी अबंध है कितनी बंद है, वो हम वहां हम देखेंगे। जैसे मिथ्यात्व में तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी, चौथे वाले को बंधेगी, तो पहले गुण स्थान में एक ही अबंध में रखनी है, समझ में आई ना बात? अब ये नारकी की हमने विशेषता देखी, देखो उसमें बहुत विशेषता है कि हर एक नरक की अलग अलग बात है। अब तिर्यंच गति में हम देखते हैं, तिर्यंच गति में क्या बनता ही नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति बनती नहीं है, आहार बनती ही नहीं है, जैसे यहाँ हमने 120 का हिसाब लगाया था वहां 117 का हिसाब होगा, ख्याल नहीं कर, फिर उसमें से वो तो विक्षिप्ति वगैरह हम नहीं जाएगा, ये मार्ग नहीं, गति की अपेक्षा में बहुत बहुत स्थूल रूप से आपको बता रही हूँ। अब देवगति में क्या है, देवगति में वो सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त वगैरह उसका बंद नहीं होता, देवगति वाले देवगति को भी नहीं बांधते, नरक गति को भी नहीं बांधते, वैकृत वैकृत अंगोपम को भी नहीं बांधेंगे, देवायु भी नहीं बांधेंगे, नरकायु भी नहीं बांधेंगे, परंतु एकेंद्रीय स्थावर आतंक का बंध कौन करेंगे, भवनवासी भवनत्रिक वाले, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और सौधर्म ईशान, उनमें वो एक इंद्रिय स्थावर आतंक को लेना, उसका हिसाब करना। ऊपर के जो है वो सनत कुमार से लेकर तिर्यंच गति बांध देंगे, पर पंचेंद्रीय जाति का ही बंद करेंगे, वो एक इंद्रिय स्थावर आतंक का बंद नहीं करेंगे, कहां तक, मारवे तक। ये तिर्यंच गति संबंधी
वहीं तक ही बंद है। ऊपर के जो शुक्ल लेशा वाले जीव है, आनत प्राणत वगैरह और सारे ग्रवेग के भी मिथ्या दृष्टि जीव भी तिरंज गति नहीं बांध सकते। मनुष्य गति ही बांधने लिए मरकर मनुष्य ही हो गए नियम से। सारे ही अनंत से लेकर सभी जो ऊपर के जो है ग्रवेग भी मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, तो इस तरह से कौन सी प्रकृतियां बांधते हैं इसके सारे नियम है, और उस नियम के अनुसार फिर उनकी विच्छित्ति वगैरह उनको कैलकुलेट कर दिए। ख्याल में आए ना। अब ये भी है, देवियों की अगर बात है तो उसमें कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं करेगा, क्योंकि वहां जो बंद करते हैं वो यहां से बनते हुए यानी यहां प्रारंभ करके जाते हैं। जो समय दृष्टि यहां बांधते हैं तो समय दृष्टि है वो स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होते। समझ में आई ना बात। समय दृष्टि जीव स्त्री में देवियों में तो उत्पन्न नहीं होगी, यानी देवियां सारे जन्म से मिथ्या दृष्टि है। हाँ, वहां उस पर्याय में वो समय पर प्राप्त कर सकती है, चौथे गुणस्थान तक जा सकती है। जैसे तीर्यंच में जो स्त्री पर्याय वाले स्त्री वेदी तीर्यंच है उसमें भी कोई समय दृष्टि उत्पन्न नहीं होगा, पर वो स्त्री पर्याय वाला जो तीर्यंच है यानी स्त्री वेद वाला पांचवें गुणस्थान तक का पुरुषार्थ होगा वहां पर उनके भी। इस तरह कहा से नित्य निगोद से निकलकर वही तो मैंने उस दिन बताया कि बादर निगोद से निकला हुआ जीव मनुष्य होकर उसी भाव में मोक्ष जा सकता है। हाँ, वो तीर्थंकर अभी शला का पुरुष नहीं होगा परंतु वो मोक्ष जा सकता है, यानी वहां से मनुष्य गति में आया है तो मनुष्य गति बांधी मनुष्य गत्यानुपुरी अवतारिक अवतारिक अंगोपांग वज्रवृष नाराज की कंडीशन है वो भी बांध के आया है, मनुष्य ही बांधकर यहाँ आया है। और अब यहाँ आपने तो नित्य शब्द लगाया, हाँ पहला है वार तो प्रथमोक्षम प्राप्त करेगा, और अनादि का है तो गिर कर जाएगा फिर अंतर्मुख में फिर प्राप्त करेगा और फिर सारा संयम भी धारण करेगा मोक्ष भी चला जाएगा। उपादान की तैयारी है तो निमित्त मिलेगा, कहाँ से मिलेगा कोई बात नहीं है। इन्हें पॉसिबिलिटीज की यहाँ चर्चा होती क्या क्या हो सकता है। हमें तो ऐसा लगता है ना कि वो निगोद का जो कैसे परिणाम करता होगा मनुष्य गति मनुष्य बांधने में, उसमें भी उसके योग्य संकलेश विशुद्धि होती रहती है। हमें क्या लगता है कि हम सोच समझ कर, देखो शिविर में आए ना शुभ भाव हमने सोच समझ कर किया और फिर हम ध्यान लगाने को बैठे ऐसा या पूजा करने को बैठे और अशुभ भाव वो तो आता है हम नहीं चाहते हुए आता है अशुभ भाव हम सोच समझ कर करते हैं, ये हमारी मिथ्या बुद्धि है क्योंकि उसके कंट्रोलर है हम कंट्रोल करके उसको कर रहे हैं, यानी राग का कर्ता होकर करना चाहता है वो मिथ्या दृष्टि। क्या है अभी गुरुदेव ने तो सब कुछ खोल कर बताया, कितनी बार बताया अभी, ये तो हर एक मार्गणा में यहाँ बताइए कहाँ कितनी क्या बनती है, कौन सी अबंध है, कौन सी विच्छित्ति होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि एक एक मार्गणा को लेंगे तो हमारे बहुत सारे उसी में चला जाएगा, 30 घंटे तो इसी में जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ लेक्चर नंबर और डेट लिखते हैं। 134 पेज पर आए वहाँ 33 लेक्चर चालू हुआ था हमारा, यानी 30 घंटे तो यहीं तक हो जाएगी हमारे, तो हम इसको भी डायरेक्ट 134 पृष्ठ पर आते हैं। वैसे हमने इसको देखा भी था इस चार्ट को, ये हमने पढ़ा था पहले आपको बीच में ही निकाल कर दिखाया था, ये हमने देखा था ना अभी मूल प्रकृतियों पर सादी और अनादि घटित कर रहे, क्योंकि यहाँ की अपेक्षा क्या है प्रकृतियों में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट घटित नहीं कर रहे, प्रकृति बंध में डायरेक्ट सादी अनादि घटित कर रहे, वो तो आसान है समझना नहीं।
तो उसकी बात हमने देखी थी, ये ध्रुवबंदी प्रकृतियां है 47, वो अनादि से बनती आ रही है। अभी अभी समझना आसान है, अपनी अपनी बंध विच्छित तक बनती रहती है। ध्रुवबंदी कौन सी देखी थी, देखो आगे उसका 137 पेज पर आना, क्योंकि 134-135 ये सब हमने पढ़े हैं। ये ध्रुवबंदी प्रकृतियां 47 है, ये कौन सी 47 है, तो ज्ञानावरण की 5 है। ये पहले कॉलम में जहाँ साधी बंध लिखा है ना, उसके नीचे पढ़ना। दर्शनावरण की 9 है, अंतराय की 5 है, मिथ्यात्व है 16 है, कषाय भय गुप्ता तेजस कारण अगुरु लघु उपगान निर्माण वर्णादि 4। ये 47 प्रकृतियों को क्या कह रहे हैं, ध्रुवबंदी। क्यों? अनादि से हर समय बनती आई है। कब तक बनेगी? अपनी बंधे विच्छित्ति तक। अब मैं आपसे पूछूंगी, इसमें से हम हिसाब लगाते हैं कौन सी कहाँ विच्छित्ति होगी ध्रुवबंदी में से? ज्ञानावरणादि 5, 10वें में विच्छित्ति, दर्शनावरण की 9। अभी आपको ऐसा कहना है, दूसरे में 3, 8वें में 2 और 10वें में 4, बराबर है? अंतराय की 5, 10वें में उसकी विच्छित्ति है। मिथ्यात्व पहले, अभी 16 कषाय में से हिसाब लगा लो। अनंतानुबंधी दूसरे में, अप्रत्याख्यान चौथे, प्रत्याख्यान पांचवे में, संज्वलन 9वें में, क्रोध मान माया लोभ है ना, ये तो 16 कषाय का हिसाब लगा। भय जुगुप्सा 8वें के अंतिम भाग में, 7वें भाग में, तेजस कारमान 8वें के अंतिम भाग में, बीच वाले 36वें भाग में, जहाँ 30 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति है, वहां पर इनका तेजस कारमान की बंध विच्छित्ति होती है। अगुरु लघु उपहार वहीं पर, निर्माण पर वहीं पर, और वर्णाधिचार भी वहीं पर। इसको कहते हैं ध्रुवबंदी। अब जो जहां जिसकी विच्छित्ति होती है, वहां से ऊपर के गुणस्थान में गया तो बंध रुक गया, और वापस नीचे आया तो बंध शुरू हुआ, उसको क्या कहेंगे? साधी। तो ये ध्रुवबंदी में साधी बंध भी है, अनादि तो है ही नहीं है, क्योंकि अनादि से बंध ही रहते, यानी अनादि में तो इसको लेना ही लेना, साधी में भी इसको ले सकते। कैसे? विच्छित्ति के ऊपर के गुणस्थान में गया और वापस नीचे आया तो उसको फिर से बंध शुरू हुआ, इसलिए उसको साधी में भी लेते। अनादि में यही आए नहीं 47? सुनो ना, अनादि से इनका बंध था कि नहीं था? हाँ था। अभी ध्रुव में कैसे लेना? अभोव्यो में ये तो बंध होता ही रहेगा, वो कभी उसकी विच्छित्ति करने वाला ही नहीं है, इसलिए उसको ध्रुव में भी कहेंगे। और अध्रुव में उसको लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ लेंगे ना, क्योंकि जो ऊपर की विच्छित्ति करके ऊपर गया है, बंध रुका है, कभी नीचे आया तो बंध चालू हो गया, तो उसको अध्रुव कहेंगे। यानी 47 प्रकृतियों में तो सब जगह ले सकते हैं, साधी में भी, अनादि में भी, ध्रुव में भी, अध्रुव में भी। ख्याल में आई इतनी बात? अभी 137 पर का वो 4 देखना, देखो। यानी वो 47 प्रकृतियों को साधी में लिया, अनादि में लिया, ध्रुव में भी लिया। अभी जिसका अध्रुव में क्या लिया, ये प्रतिपक्षी वाली होती है, उसको वहां पर ले लिया। हमने जो गिनी थी ना, आपको याद है 73 प्रकृतियां अध्रुवबंदी में गिनी थी, फिर उसके 11 और 62 ऐसे भेद किए थे। हाँ, प्रतिपक्षी और अप्रतिपक्षी इस तरह से वो सब इसमें ले लिए उन्होंने। तो उनका कैसा है, प्रतिपक्ष सही थे या कोई ऐसी प्रकृतियां है, बनती तो बनती है, नहीं तो नहीं बनती है, तो उसको कैसे लेंगे हम? अध्रुव में लेंगे, और उनको शादी में भी ले लेंगे। अभी हम ये शादी आदि की बात छोड़कर थोड़ा आगे कहते हैं,
जो ध्रुव है दूसरे किसी जीव में हुई अध्रुव।
हाँ, अभव्य में ध्रुव कही, यानी वो ध्रुव किस अपेक्षा से कि जो उसकी विच्छुति नहीं करेगा उनके लिए वो ध्रुव है। देखो देखो, जब बंधक ये अध्रुव अध्रुव भेद कर रहे हैं वो बात अलग है, और प्रकृतियों को जब हम ध्रुवबंदी अध्रुवबंदी कह रहे हैं वो बात अलग है। वो प्रकृतियों के हम भेद कर रहे हैं अध्रुवबंदी, क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ प्रतिपक्ष वाली है, या आयु और तीर्थंकर या आयुर्वेद समान जैसे बंधने वाली है, या प्रघात उछवा जैसे बंधेगी तो बंधेगी नहीं तो नहीं बंधेगी, इसलिए उन प्रकृतियों को अध्रुव बंधी कहा। हाँ, अब उनका बंध कैसे हो सकता है उस पर अभी शादी अनादि ध्रुव अध्रुव लगाना है, उन प्रकृतियों पर ये लगाना है। वो अध्रुव बंधी है तो उनका बंध भी अध्रुव तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई चीज नई नहीं है उसके अंदर, है ना?
अध्रुव प्रकृतियों में भी ध्रुव बंधी बनेगी ऐसा, क्योंकि अनादि से बंधेगी है ना, बंध विच्छेद तक बंधेगी, इसलिए उसको अध्रुव वाली कितनी प्रकृति
ना ना, अध्रुव इसलिए है कि उसका प्रतिपक्ष बनता है,
बरोबर
है? प्रतिपक्ष बनता है तो उसको अनादि से नहीं कह सकेंगे, उसको आदि वाली कहेंगे, क्योंकि जब वो प्रतिपक्ष की बन रही तब ये नहीं बन रही थी, उसके बाद बनना शुरू हुआ। जैसे वेदनी की कहते हैं साता वेदनी असाता वेदनी, जब असाता वेदनी बन रहा था तो साता का बंधन नहीं था, बाद में बंधना शुरू हुआ तो उसको हम सादी कहेंगे, अध्रुव भी कहेंगे उसी। हाँ, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, दो मिनट, ये पेज नंबर 138 को पढ़ लेते हैं। ये जो टेबल बनाए यहां पर एक, वहां जो पहले तो है ना अप्रतिपक्ष और सप्रतिपक्ष, ये दोनों मिलकर अध्रुवबंधी है, और आगे जो अनुभवी लिखा है वो ध्रुवबंधी है। अब उसके नीचे का पैराग्राफ हमको 126 की टीका पढ़नी है, यानी वहां ये बात पूछ रहे, तो गाथा के ऊपर क्या हेडिंग है, इन अध्रुव प्रकृतियों का, अध्रुव प्रकृतियों को ही अध्रुव बंदी कहा था, कौन से सप्रतिपक्ष और अप्रत्यक्ष वालों को, तो उसका सादी और अध्रुव बंद ही कहा ही लगाया, उसमें अनादि नहीं कहा, ध्रुव भी नहीं कहा, उसका कारण क्या है, यही प्रश्न था ना आपका। ये प्रकृतियां कैसी है, अध्रुव बंदी, तो उनका बंध कैसा बताया, सादी और अध्रुव, उसका कारण बताते हैं। तीर्थंकर आहार द्विक चार आयु, इन सात प्रकृतियों का निरंतर बंध काल जघन्य से अंतर्मूर्त है, यानी मिनिमम तो अंतर्मूर्त तक बंधेगी ही बंधेगी, ऐसा कभी नहीं होगा एक समय में बंधी और रुक गई। आहार द्विक सातवें आठवें में बनती है, सातवें में अंतर्मूर्त तो बंधेगी बंधेगी, छठे में आते तो नहीं बंधेगी, सातवें के अंतर्मूर्त काल प्रमाण बनती रहेगी। आयु का भी ऐसा है, तीर्थंकर का अंतर्मूर्त क्यों कहा, हो सकता है ना बंध का प्रारंभ किया किनी मुनिराज ने और उक्षम श्रेणी चढ़ी तो अंतर्मूर्त के बाद रुक गया वो, फिर देव में जाकर के वहां पर बंधना चालू हो जाएगी, तो मिनिमम अंतर्मूर्त तो बनती ही बनती, इसलिए वहां पर उसको निरंतर बंधी मिल गया। और बाकी तो उसका जब से बंध प्रारंभ हुआ दूसरे भाव में भी बंधेगा, फिर आके मनुष्य में भी बंधेगा, जब तक श्रेणी चढ़ता है तब तक कंटिन्यूस हर समय बंध रहा है, अभी उसको शुभ उपयोग अशुभ उपयोग सब कुछ कहो तभी उनका बंध चल रहा है। प्रति समय कर्मों का बंध है, जब इन सात प्रकृतियों का बंध होने लगता है तब जघन्यपने से निरंतर, निरंतर ने एक समय का भी अंतर छूटे बिना अंतर्मूर्त काल तक बंद होता है। अवशेष जो 66 प्रकृति हमने ऊपर देखी थी ना सप्रतिपक्ष वाली, निरंतर बंद का जघन्य काल एक समय है, यानी उसमें एक समय के लिए बंद हुआ और वापस उसका प्रतिपक्ष बंद हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, या उपघात उद्योत आतप वगैरह वो एक समय के लिए बंदी नहीं बंदी, ऐसा भी हो सकता है। जिसका किसी एक समय में बंद हुआ, द्वितीय आदि समय में उस प्रकृति का बंद हो अथवा ना भी हो, इस कारण उन 73 अध्रुव प्रकृतियों का सादी बंध और अध्रुव बंध सिद्ध हुआ। इस तरह से यहाँ तक हमने प्रकृति बंध का प्रकरण कैसे भी करके समाप्त कर दिया। उसकी विच्छित्ति हो गई प्रकृति बंध। अब स्थिति बंध की बात थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे। बोलो 24 स्वरूप।